भगवान की, भगवान का संग, भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा, बिना भगवान की कुछ सेवा किए नहीं मिल सकती, चाहे वो किसी भी प्रकार से की जाए। सो प्रभुपाद अनेक बार बता रहे हैं भगवद गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करता, तब तक उसे भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। और कोई व्यक्ति अनजाने में अगर भगवान की सेवा करता है तो उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं, है ना, आप सबको पता ही है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम दूसरे लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे, पूरी दुनिया भगवान की कृपा प्राप्त करे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि लोग, आप घर का दरवाज़ा थोड़े ना आप धाड़ से मार के आ रहे हो, आप लोग भगवान की कुछ सेवा करें, चाहे समझ आए उनको चाहे नहीं आए, है ना। तो भागवतम में हम उल्लेख देखते हैं अजामिल का, है ना। तो अजामिल लास्ट में जो मरणासन था, तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, सबसे छोटे बच्चे का नाम। तो जब भी कुछ खा रहा था तो बोल रहा था, नारायण आओ खा लो, नारायण आओ पानी पी लो, नारायण सो जाओ, नारायण खेल लो, नारायण ये करो, नारायण वो करो। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको पता नहीं था कि वो नारायण का नाम ले रहा है, तो वो अज्ञात सुकृति है वो। और हम सब जानते हैं कि वो अज्ञात सुकृति के फलस्वरूप उसको बहुत ही बड़े खतरे से उसका बचाव हुआ, भगवान ने रक्षा की विष्णु दूत भेजकर, है ना। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि जब प्रलय का समय आया था, तो भगवान एक छोटी सी मछली के रूप में किस राजा के पास गए थे, राजा सत्यव्रत के पास, है ना। सो उस समय राजा को पता नहीं था कि ये मछली स्वयं भगवान है, तो उन्होंने, उनके मन में मछली की रक्षा करने का प्रेरणा आई, तो उन्होंने वो मछली को छोटे से लोटे में डाला, है ना, फिर कुएं में डाला, तालाब में डाला, झील में डाला, फिर लास्ट में समुद्र में उनको डाला। तो मछली ने बोला कि तुम समुद्र में मुझे डाल रहे हो, समुद्र में तो बहुत खतरनाक जीव होते हैं, तो मुझे मार देंगे वो। तो फिर राजा भगवान की कृपा से उसको, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। सो मछली ने बोला कि मुझे खा जाएंगे, आप क्या कर रहे हो, आपने मेरी रक्षा का व्रत लिया आपने, तो आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान की दया से उसको बात समझ में आई, है ना, और उसने कहा कि आप एक दिन में इतने बढ़ गए हो, आप ऐसा अद्भुत कैसे हो गया कार्य, अवश्य ही आप परम भगवान हो आप। तो उसको समझ में आ गई, ददामी बुद्धि योगा, है ना। सो भगवान जो है वो बुद्धि देते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कोशिश करें कि लोग किसी ना किसी प्रकार से भगवान की कुछ सेवा कर पाए, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में भी हम इसका उदाहरण देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, तो वहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती और उसके 60,000 शिष्य जो थे, वो निरंतर चैतन्य महाप्रभु और उनके जो साथी थे उनका उपहास करते थे। तो वो इतना लेट आने का क्या पॉइंट है? आप ना ही आते हैं? अच्छा, सो वहाँ पर जो डिवोटी थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था एक, और भी डिवोटी थे, वो सोच रहे थे कैसे शायद तपन मिश्र थे मेरे ख्याल। सो वो बहुत ही निराश थे कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और सारे मायावादी सन्यासियों को, प्रकाशानंद सरस्वती समेत सबको अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो चैतन्य महाप्रभु जाते नहीं थे, लेकिन अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु उस भोजन जो आयोजन किया था महाप्रभु उसमें सम्मिलित हुए। और जहाँ पर हाथ पांव धोते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाकर बैठ गए और बहुत ही अद्भुत लीला की चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर। क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? अपने शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जो है वो प्रकट किया। हाँ, तो क्योंकि मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो प्रकाश से बहुत प्रभावित होते हैं, सब प्रकाश में मिल जाएंगे, ज्योति, ब्रह्म ज्योति। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रकट की, करोड़ों सूर्यों जैसे तेज महाप्रभु ने दिखाया। तो प्रकाशानंद सरस्वती बहुत प्रभावित हो गया। तो वो प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला कि आप नीचे क्यों बैठे हो, आप ऊपर आके हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तो मतलब बहुत ही पतित हूँ, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। हाँ, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा नहीं नहीं आप तो सन्यासी हो और आपने केशव भारती से सन्यास लिया है, बहुत ही वो अच्छे सन्यासी हैं, उच्च कोटि के सन्यासी हैं, आपको शोभा नहीं देता ऐसे नाचना गाना, लेकिन आप प्लीज़ नीचे मत बैठो। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। तो महाप्रभु ने उसको अवसर दिया सेवा करने के लिए। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपनी जगह से उठे और चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उनका हाथ पकड़ा और उनको खींच के अपने साथ ऊंचे स्थान पर बिठाया। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ से ले जाने का जो कार्य था आसन पर बिठाने का, वो अज्ञात सुकृति थी। और वो अज्ञात सुकृति जब तक उसने अर्जित नहीं किया तब तक महाप्रभु ने उस पर कृपा नहीं किया। अगर वो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ से नहीं लेके जाता तो चैतन्य महाप्रभु उसको भक्त नहीं बनाते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तो क्योंकि उसने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की अनजाने में ही चाहे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसके मायावाद सिद्धांत का खंडन किया और उसको और सारे 60,000 शिष्यों को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। नहीं, यही सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने पूरा जीवन, पूरा इसी सिद्धांत के ऊपर प्रभुपाद ने प्रचार किया। प्रभुपाद तो फ़ोन अपना प्लीज़ साइलेंट कर लो। हाँ, जो बाद में भी आए हैं, आपका फ़ोन प्रभु साइलेंट पे है ना? तो वहाँ साइलेंट पे फोन। सो चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत पर कि लोगों को किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा करने दो, तो श्रील प्रभुपाद ने ये सिद्धांत लिया और इस सिद्धांत के ऊपर पूरा इस्कॉन की स्थापना कर, इस्कॉन खड़ा कर दिया श्रील प्रभुपाद ने, है ना। श्रील प्रभुपाद ने लोगों को प्रसाद खिलाया, प्रसाद खाना और बोला बहुत टेस्टी है ये, तो वो क्या था? अज्ञात सुकृति थी। नहीं, और वो लोग श्रील प्रभुपाद के लिए वो एक कमरा किराए पे लिया। उनको पता नहीं है कौन है ये स्वामी, इनका क्या स्थिति है, कितने शुद्ध भक्त हैं ये, कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगे। प्रभुपाद ने उनको किसी ना किसी तरीके से सेवा में लगाया, और जब उन्होंने सेवा की और उस अज्ञात सुकृति के बल पर जो छोटी सी चिंगारी जो दिखाई दी प्रभुपाद को, फिर प्रभुपाद ने उसको हवा देना शुरू किया और एकदम से इतनी बड़ी आग फैल गई, पूरे संसार के अंदर वो फैल गई। नहीं तो उसके पीछे सिद्धांत अज्ञात सुकृति का है, सिद्धांत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो प्रभुपाद ने इसके लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, किसका, रथ यात्रा का, है ना। रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे हैं प्रभुपाद और सारे भक्त, और न्यूयॉर्क में और सारे अलग अलग बड़े शहरों में निकाल रहे हैं, तो लोग दूर से भी देख रहे हैं और उनको देख के हैरान भी अगर हो गए, ओ यार देखो क्या मतलब, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं लोग, बस इसी में अज्ञात सुकृति मिल गई उनको। आज नहीं तो कल भगवान की सेवा में लग जाएंगे। जैसे एक जयानंद प्रभु हैं, उन्होंने जयपताका महाराज को वो उसका रथ बनाने में लगा दिया, जगन्नाथ जी का। तो जयपताका महाराज को उस समय आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने वो रथ बनाने में सहयोग किया, पहिया बनाने में। आज देखो कितने बड़े शुद्ध भक्त बन गए वो, नहीं। सो आइडिया ये है, जो प्रभुपाद का जो विचार है, जो प्रभुपाद का मेथड है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की सेवा में लगाओ, चाहे एक क्षण के लिए लगाओ, कम से कम उसके पास कुछ तो अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो, कुछ तो ऐसा बहाना बने कि वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का पात्र बन जाए, है ना। सो ये जो रथ यात्रा है, जैसे हम अब शोभा यात्रा आयोजन कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण है कि आप क्या योगदान कर रहे हो, वो उसका महत्व सिर्फ 5% है। 95% महत्व ये है कि आप और कितने लोगों को इसमें जोड़ रहे हो, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो आप तो खुद इसमें जुड़ो ही और जुड़े ही हुए हो आप लोग, लेकिन जो हमारा मुख्य हमारा विचार होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम और अधिक से अधिक लोगों को इससे कैसे जोड़ें, ताकि कुछ कोई चांस नहीं है उसके जीवन में कुछ भी सौभाग्य का, बिल्कुल कीड़े की तरह पैदा हुए, कीड़े की तरह मरने वाली हालत है, है ना। और उस दौरान के अंदर कुछ सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ऐसे हालत के अंदर जब वो कुछ कर नहीं सकता, उसको किस प्रकार से आप भगवान की सेवा में लगाओगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान भी अगर हमने सेवा में लगाया, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वव्यात्, थोड़ा सा भी अगर उसको सेवा में लगा दिया, तो त्रायते महत्वव्यात्, महत भय, भय बहुत तरह के भय हैं। कुछ लोग ये डरते रहते हैं शाम को खाना क्या खाएंगे, पैसा इकट्ठा, शाम को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले सब सुख से घर आ जाएं शाम को, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कई लोग ये भय में रहते हैं। पीछे मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, बॉम्बे की जो पुलिस है उनकी जो घर वाले हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे घर वाले जाते हैं सुबह ड्यूटी पे, तो हम यही टेंशन में रहते हैं आएंगे नहीं आएंगे, तो उस भय के अंदर ही है वो, उससे ऊपर बढ़ के सोच ही नहीं पा रहे वो, नहीं। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है ना, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दुख है। इससे भी बड़ा दुख क्या है जिसके कारण ये सब हो रहे हैं? भगवान की विस्मृति है ना, कि हम भगवान को भूल गए हैं। भगवान को भूलना सबसे बड़ा दुख है। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी सुकृति मिल गया तो जो भगवान की विस्मृति है वो कभी ना कभी उसकी हटेगी। भगवान कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि उसको भगवान की सेवा में लगने का अवसर भगवान देंगे। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम प्रचार में कुछ भी हम प्रयास करेंगे, तो उसका मकसद होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को भगवान की सेवा में लगाएं, चाहे प्रसाद खिलाकर लगाएं, चाहे हम उनको प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें दे दें। जैसे अभी हम शोभा यात्रा निकालेंगे तो हम बहुत ढेर सारे फूल लेके हम रथ के आगे चलेंगे, दो तीन भक्त। तो रास्ते में जो भी लोग मिलेंगे उनको दो दो चार चार पंखुड़ियाँ देंगे उनको कि आप जगन्नाथ जी को ऑफर करो। उनका जेब से क्या गया? नहीं, लेकिन वो जगन्नाथ जी को वो फ्लावर्स, उन्होंने फूल ऑफर कर दिए, उसी से उनको बहुत ज़्यादा स्फूर्ति मिलेगी। आप लोग प्रसाद वितरण करोगे, फ्रूट्स वगैरह दोगे, नहीं मिश्री इत्यादि आप बांटोगे जगन्नाथ जी को ऑफर्ड, तो वो लोग वो खाएंगे, उससे उनको सुकृति मिलेगी, उससे उनको है ना। तो हो सकता है आज, हो सकता है 10 साल के बाद, 10 जन्म के बाद, हमें नहीं पता भगवान का क्या प्लान है, लेकिन क्योंकि उसने भगवान की सेवा की, भगवान को कुछ फल फूल ऑफर किए, उसी से उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आप प्लीज़, आप सब जो इससे जुड़ रहे हो, आप इस मकसद को ध्यान में रख के कि हम इस मकसद से कर रहे हैं। हमारा मकसद कुछ नाम कमाना या ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है कि जो लोग इतने बेचैन हैं, बुरी तरह से परेशान हैं, समझ में नहीं आ रही कहाँ से क्या रास्ता निकलेगा, उनको भगवान की कुछ अज्ञात सुकृति प्रदान की जाए। तो आप सब लोग प्लीज़ प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अज्ञात सुकृति प्राप्त कर पाएँ, इसमें भाग ले पाएँ, तो ही सक्सेसफुल होगा ये, है ना। ठीक है ना।